हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 48 एंड 49। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति।
आराध्यो भगवान ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेनया कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममालम प्रेम पुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापर वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा पीतांबर दरुण बिंब फल धरोष्ठा पुरेन्दु सुंदर मुखा अरविंद कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जानि करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्र स्यपुटीशयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिहवे पिबस्वा मृतुमेत देवा गोविंद दामो धर्माधवेति वर्हापीडं नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रात्वास कनकपिशं वैजंतीं शमाल्यं रंध्रार्वेणुं अधरसुदया पूर्णयोगोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् कीर्तकीर्ति। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की ग्रंथा श्रीमद्भागवतम महापुराण की।
श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 5 जिसका शीर्षक है मैत्रेय से विदुर की वार्ता। जब विदुर जी मैत्रेय से सृष्टि के उत्पत्ति के विषय में पूछते हैं तो मैत्रेय मुनि समस्त वस्तुओं के उत्पन्न करने के बाद देवता जो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं उनके विषय में बता रहे हैं। देवताओं ने भगवान से श्लोक नंबर 46 में कहा कि जब कोई जीव गंभीर हो जाता है और वो बहुत ही सिंसियरली भगवान की भक्ति करना शुरू कर देता है, बस जब जीव की सिंसियरिटी उस को भगवान की भक्ति करने पर ही विवश कर देते, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं है। फिर बाकी जो चीज़ें हैं ज्ञान और वैराग्य, वो स्वतः उसके मन में आ जाते हैं। और ज्ञान, जैसे जैसे हम भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, भगवान के नाम को जप करते हैं, तो हृदय के अंदर भौतिक आसक्ति समाप्त हो जाती है और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण अंत में भगवत धाम प्राप्त होता है। और उसके उपरांत श्लोक नंबर 47 में बताया कि इसके जो भगवान के प्रेममयी भक्ति में नहीं जुड़ते हैं, अन्य लोग जो कि दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा शांत हो जाते हैं, तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति एवं ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय पा ली है, वो भगवान के अंदर प्रवेश करते हैं, यानी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। किंतु उन्हें काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है, जबकि भक्त केवल भक्तिमयी सेवा संपन्न करता है और उसे ऐसा कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। तो भक्त केवल भक्ति यानी भगवान की कथाओं को श्रवण करके, भगवान के नाम जप करके भगवान के प्रेम को प्राप्त करता है और भगवान के धाम को प्राप्त करता है। उसके बाद देवता भगवान से कहते हैं, तत्रे वयम् लोकस्य श्रेक्षयाद्यत् त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिस्म सर्वे वियुक्ता स्वविहारतन्त्रम् न शक्नुमस्तत् प्रतिहर्तवेते तत्ते वयम् लोकस्य श्रेक्षयाद्य त्वयानुसृष्टा त्रिभिरात्मभिस्म सर्वे वियुक्ता स्वविहारतन्त्रम् न शक्नुमस्तत् प्रतिहर्तवेते तत्ते वयम् लोक सिसृक्षयाद्य। तत् यानी इसलिए, ते तुम्हारा, वयम् हम सभी, लोक यानी इस संसार, सिसृक्षया यानी सृष्टि के लिए आद्य हे आदि पुरुष, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, अनुसृष्टा एक के बाद एक उत्पन्न किया जाकर। वो देवता भगवान से कहते हैं, तत्ते वयम् इसलिए हम एकमात्र आपके हैं, त्वम यानी हम आपके ही हैं, त्वया तुम्हारे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, त्वयानुसृष्टा एक के बाद एक करके आपने सारी सृष्टि को उत्पन्न किया है, त्रिभि यानी तीन गुणों के द्वारा, आत्म भी यानी अपने आप से, यानी हम आपसे ही हैं, लेकिन प्रकृति के तीन गुणों से प्रभाव के कारण हम बार बार जन्म लेते हैं। त्वयानुसृष्टा त्रिभिरात्म भीष्म सर्वे वियुक्ता, सर्वे मना सभी, वियुक्ता यानी पृथक किए हुए, अलग अलग हो गए हैं, और स्वविहार तंत्र, स्वविहार मतलब अपने आनंद के लिए कार्यों का जाल। भगवान के अंश होने के बावजूद भी भौतिक जगत में आकर तीनों गुणों का प्रभाव हो जाता है और अपने आनंद के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं। और न शक्नुम, न मतलब नहीं, शक्नुम मतलब कर सके, तत् यानी वह, प्रतिहर्तवे यानी प्रदान करने के लिए, ते तुम्हें, भगवान के अंश हैं तो भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए कार्य करना चाहिए, परंतु आपके दिव्य आनंद हेतु कार्य नहीं कर पाए, बल्कि अपने आप को आनंद प्रदान करने के लिए मूर्खतावश कार्य किया और इसी के कारण कर्म बंधन में फंस गए और बारंबार जन्म लेना पड़ा। अनुवाद देखिए, हे आदि पुरुष, इसलिए हम एकमात्र आपके हैं, यद्यपि हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी हैं, किंतु हम प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं, इसलिए हम अपने कर्म में पृथक पृथक होते हैं। अतएव सृष्टि के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप में कार्य नहीं कर सके। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यह विराट सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति के तीन गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्यशील है। जैसा कि हम जानते हैं, भगवत गीता में हमने तीन गुणों को बहुत अच्छे से समझा, समझने का प्रयास किया कि पूरी प्रकृति जो है वो तीन गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्य कर रही है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। विभिन्न प्राणी भी उसी प्रभाव के अधीन हैं, अतएव वे भगवान को तुष्ट करने के लिए एकजुट होकर कर्म नहीं कर सकते। मतलब उनके अलग अलग गुणों के कारण वो अलग अलग सोच रखते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, तो एक साथ एक ही मत होकर भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। कार्यों की इस विविधता के कारण भौतिक जगत में कोई एक सा एक्य या सामंजस्य नहीं हो सकता। इसलिए सर्वोत्तम नीति यही है कि परमात्मा के लिए कर्म किया जाए, इससे वांछित एक्य स्थापित हो सकेगा। अब श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, सबकी अलग अलग मनोवृत्ति है, सबके ऊपर अलग अलग गुण जो है वो असर कर रहा है, तो सब एक तरह से तो कार्य नहीं कर सकते। सबकी बुद्धि अलग अलग है, सबकी विचारधारा अलग अलग है, लेकिन यदि इसको एक बनाना है तो सर्वोत्तम नीति क्या है कि वो किसी भी तरह से, किसी भी विचारधारा से कार्य कर रहा है, यदि वो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, नीति यही है कि परमात्मा के लिए कर्म किया जाए, इससे वांछित एक ही स्थापित होगा। भले वो अपने पॉइंट ऑफ विजन से कार्य कर रहा है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा है। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कार्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने, इससे वांछित एक ही स्थापित हो सकेगा। इसलिए एक वांछित एक ही मतलब फिर सबका उद्देश्य वही होगा ना कि भगवान को प्रसन्न करना है, तो वो एकत्व आ जाएगा उसके अंदर, जो ये बिखरा हुआ है ना सबका मन। लेकिन अगर उसके अंदर एक बुद्धि, विचार, निर्णय एक आ जाए कि हमें भगवान के लिए कार्य करना है, भगवान को खुश करने के लिए कार्य करना है, तो वो एक ही स्थापित हो सकेगा। आगे मैत्रेय मुनि बताते हैं कि देवता भगवान को ऐसे बोलते हैं कि आप ही हमें बताइए, क्योंकि हम तो संसार में आकर गुणों के कारण हम आपकी भक्ति नहीं कर पाते हैं, तो आप हमें बताइए कि हम किस तरह से अपने आप को आपके समर्पित कर सकें, किस तरह से आपको भोजन अर्पण करें, किस तरह से अपने हृदय में आपके प्रेम को उत्पन्न करें, उसके विषय में देवता पूछते हैं। वे कहते हैं, यावत् बलिं तेजः राम काले यथा वयं चानमदाम यत्र यथो वयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तोन्नमदन्त्यनोहा यावत् बलिं तेजः राम काले यथा वयं चानमदाम यत्र यथो वयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तो न मदन्त्यनोहा। यावत्, यावत् मतलब जिस जैसा संभव हो, जैसे पॉसिबल हो, बलिम यानी भेंट, ते यानी तुम्हारे, अज हे अजन्मा, हराम यानी अर्पण करें, यानी आप हमें बताइए कि किस तरह से आपको भेंट अर्पण करें, किस तरह से आपको भोग लगाएं। यथा वयम चान्न मदामा यत्र, यथा मन जिस प्रकार, जिस तरह, वयम यानी हम, च भी अन्नम, अन्न यानी अनाज, अदाम यानी खाएंगे, और किस तरह से आपको भोग लगा के फिर उन वस्तुओं को हम ग्रहण करें। यथो बयेशाम त इमे ही लोका, यथो जिस तरह, उभयेशाम तुम्हारे यथा अपने दोनों के लिए, ते सारे, इमे ये ही निश्चय ही, लोका यानी जीव, यानी जिस तरह इस जगत के अन्य समस्त जीव
बिना किसी उत्पाद के अपना पालन भी कर सकें, यानी आपको कैसे भोग लगाएं, हम कैसे खाएं और दूसरे लोगों को किस तरह से हम बताएं कि वो किस तरह से जिए। बलिम हरंती, हरंतो अन्न मदंती अनुहा, बलिम अर्थात भेंट, हरंत यानी अर्पण करते हुए, अन्नम यानी अन्न, अदंती यानी खाते हैं, अनुहा बिना किसी प्रकार के उत्पाद के, यानी कि एक जीव का जो जीवन है वो किस तरह से संतुष्ट हो जाए, कैसे वो भोग लगाए, कैसे खाए और कैसे संसार के लोगों को शिक्षा दे। अनुवाद देखिए, हे अजन्मा, आप हमें वे मार्ग तथा साधन बताएं जिसके द्वारा हम आपको समस्त भोग की अन्न तथा वस्तुएं अर्पित कर सकें, जिससे हम तथा इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पाद के अपना पालन पोषण कर सके, तथा आपके लिए और आपके अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सके। सिंपली कि जीव को किस तरह से भोग लगाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से दूसरे लोगों को इसके लिए प्रेरणा देनी चाहिए ताकि उनका जो जीवन है वो आनंद से बीत सके, और कौन सी वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बताते कि विकसित चेतना मनुष्य जीवन से प्रारंभ होती है, जो उच्चतर लोकों में निवास करने वाले देवताओं में और भी बढ़ जाती है। मतलब जब तक मनुष्य का जीवन प्राप्त नहीं होता है तब तक तो जीव को ये पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। उनको केवल आहार निद्रा वही मैथुन में ही आनंद आता है, वही कार्य करते हैं। लेकिन जब वो मनुष्य का जीवन प्राप्त करता है तो उसकी चेतना विकसित होती है, जो उच्चतर लोकों में निवास करने वाले देवताओं में और भी बढ़ जाती है। विकसित चेतना क्या है? कि मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। और जब देवता जो लोग होते हैं, मनुष्यों को तो ये पता होता है लेकिन फिर भी वो हर वक्त गुणों के, ये जो तीन गुणों के असर के अनुसार कारण वो अपने इस स्वाभाविक अस्तित्व को सदैव स्मरण नहीं रख पाते हैं। लेकिन देवताओं को पता होता है, देखो देवता कैसे, सूर्य देव हैं, चंद्रमा हैं, अग्नि, पवन, वरुण, ये सब भगवान की इच्छा और आज्ञा के अनुसार सदैव परफेक्ट कार्य करते हैं। वो अपने कार्य को कभी भी छोड़ते नहीं हैं, उनको पता है। वो यहाँ पर पता है श्री प्रभुपाद जी ने कि विकसित चेतना मनुष्य जीवन से प्रारंभ होती है और उच्चतर लोकों में निवास करने वाले देवताओं में और भी बढ़ जाती है। यह पृथ्वी ब्रह्मांड के लगभग बीचों बीच स्थित है और मनुष्य जीवन देवताओं तथा असुरों के बीच, जीवन के बीच का माध्यम है। यानी नीचे असुर है, ऊपर देवता है, मनुष्य बीच का है। तो कभी कभी मनुष्य देवताओं जैसे कार्य करता है, यानी भगवान की भक्ति, भगवान को शरणागत हो जाते हैं, तो कभी कभी असुरों जैसे कार्य भी करता है। तो पृथ्वी के ऊपर के लोक विशेष रूप से उच्चतर बोधकों अर्थात देवताओं के निमित्त है। ऊपर वाले वे देवता इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि वे अपने जीवन स्तर में संस्कृति, भोगलाल, सौंदर्य, शिक्षा तथा आयु के दृष्टिकोण से अत्यधिक बड़े चढ़े होते हैं। अब मनुष्यों और अगर देवताओं में कंपेयर किया जाए तो उनमें सबसे पहले उनके पास ना संस्कृति ज़्यादा है, शास्त्रों का ज्ञान ज़्यादा है, भोग भी अनलिमिटेड है, विलास भी अनलिमिटेड है, सौंदर्य भी बहुत सारा है और शिक्षा तथा आयु भी उनकी बढ़ी हुई है। तो अत्यधिक बड़े चढ़े होते हैं वे पूर्णतया, और उसके साथ साथ वो पूर्णतया ईश भावना भावित होते हैं। उनको ये पता होता है कि हम भगवान के दास हैं। तो ऐसे देवता सदैव भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, जो भगवान की आज्ञा होती है वही कार्य करते हैं, क्योंकि वे भली भांति इस तथ्य को जानते हैं कि हर जीव स्वाभाविक तौर पर भगवान का नित्य अधीनस्थ सेवक है। देवता कभी नहीं भूलते, उनको याद रहता है कि सब कोई भगवान के नित्य अधीनस्थ सेवक हैं। वे यह भी जानते हैं कि एकमात्र भगवान ही सारे जीवों की जीवन आवश्यकताएं पूरी करके उनका पालन करते हैं। देवताओं को पता है कि ड्यूटी तो हमें दी गई है, लेकिन वास्तव में सब जीवों की सारी आवश्यकताएं पूरी करने का दायित्व भगवान का है और उनका पालन करना वो भगवान की जिम्मेदारी है। इसलिए इस सत्य की पुष्टि इस वैदिक सूत्र में होती है। शिला प्रभुपाद जी बताते हैं, एको बहुनाम यो विद्याति कामनाम ता एनम ब्रुवन्ना यतनम न प्रजानीह यस्मिन प्रतिष्ठता अन्नमदामे इत्यादि। भगवत गीता में भगवान को भूत भृंद अर्थात सारे जीवों का पालन करने वाला कहा गया है। अब यहाँ पर एक बात श्रीला प्रभुपाद जी ने बताई कि हमारे पास जो कुछ भी है अपने पालने के लिए, जो भी अन्न मिलता है, जो वर्षा है, जो भी संसार में रहने की आवश्यकता है, वो कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहा है। तो आगे श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, ये आधुनिक सिद्धांत है कि भुखमारी का कारण जनसंख्या में वृद्धि है। आजकल जो ये सिद्धांत बताया गया कि क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है इसलिए लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन इसका ये कारण नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण भुखमारी नहीं हो रही है, भुखमारी इसलिए हो रही है कि जो मनुष्य है उसने सिद्धांत के अनुसार जीना छोड़ दिया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, जो देवताओं या भगवत भक्तों को स्वीकार्य नहीं है, मतलब देवता या भगवत भक्त इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि मनुष्य या पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है इसलिए लोग भूखे मर रहे हैं। भक्त या देवतागण इस बात से पूर्णतया अवगत हैं कि भगवान कितने भी जीवों का पालन कर सकते हैं, बशर्त ये कि वे इसका ध्यान रखें कि किस तरह भोजन किया जाए। मतलब भक्त जानते हैं कि अगर जीव को कोई कष्ट मिल रहा है तो उसका कारण ये है कि वो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। जब जीव भगवान की आज्ञा का पालन करेगा तो भगवान तो करोड़ों करोड़ों जीव को करोड़ों करोड़ों जन्मों से पालते आ रहे हैं। भगवान को कोई जनसंख्या के बढ़ने के कारण अनाज कम हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात बताई है कि भक्त या देवतागण इस बात से पूर्णतया अवगत हैं कि भगवान कितने भी जीवों का पालन कर सकते हैं, बशर्ते कि वो उसका ध्यान रखें कि किस तरह से भोजन किया जाए। और किस तरह से करना चाहिए? यदि वे सामान्य पशुओं की तरह भोजन करना चाहता है जिनमें ईश चेतना नहीं होती है, तो उन्हें जंगल में रहने वाले पशुओं की तरह भुखमारी, दरिद्रता तथा अभाव में जीवन बिताना होगा। अब चॉइस हमारे ऊपर है। अगर हम जानवरों की तरह जीना चाहते हैं, जब दिल करे जो दिल करे खाएं और जिस तरह से दिल करे खाएं, तो फिर जानवरों की तरह हमें भी भुखमारी, दरिद्रता का अभाव, दुख का अभाव हमें सहना पड़ेगा। और इसीलिए आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जंगल में पशुओं का भी पालन भगवान उनकी रुचियों का भोजन प्रदान करके करते हैं, किंतु वे ईश चेतना में बड़े चढ़े नहीं होते हैं। इसी तरह भगवान की कृपा से मनुष्यों को अन्न, शाक, फल तथा दूध उपलब्ध है। अतः मनुष्य का यह धर्म है कि वह भगवत कृपा से को स्वीकार करे। तो ये जो कुछ भी मिल रहा है हमको, दूध, फल, सब्जियां, ये सब भगवान की कृपा से मिल रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, मनुष्य का धर्म है कि वह भगवत कृपा को स्वीकार करे और कृतज्ञता के रूप में भोज्य वस्तुओं की पूर्ति के लिए उन्हें भगवान के प्रति आभारी होना चाहिए। फिर साथ साथ में भगवान से जब वो इतना कुछ प्राप्त करते हैं तो भगवान से भगवान को भी अर्पण करना चाहिए, आभारी होना चाहिए ना कि भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है। उन्हें चाहिए कि यज्ञ में सर्वप्रथम वे भगवान को भोजन अर्पित करके जो उच्छिष्ट बचे उसे ही खाएं। यानी ऐसा नहीं बस कुत्तों की तरह जब दिल करे जो दिल करे खा जाए, वो पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए फिर खाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 3.13 में इसकी पुष्टि की गई है कि जो व्यक्ति यज्ञ संपन्न करने के बाद भोजन ग्रहण करता है वह शरीर तथा आत्मा के समुचित पालन पोषण हेतु असली भोजन करता है। यज्ञ शिष्टाशन संतो मुच्यंते सर्व किल विषय, कि यदि हम भगवान को भोजन पहले व्यक्ति यज्ञ संपन्न करने के बाद भोजन ग्रहण करता है, यानी भगवान को अर्पण करने के बाद जब खा रहा है तो वो भोजन केवल शरीर को नहीं आत्मा को भी पालन पोषण करने वाला है। किंतु जो व्यक्ति अपने लिए भोजन बनाता है और कोई यज्ञ नहीं करता, वह भोजन के रूप में पाप के ग्रास को ही खाता है। भुंजते थे तो अगम पापा, ये पचनते आत्म कारणात्। अगर हम भगवान को अर्पण नहीं कर रहे हैं, नाम रूपी संकीर्तन यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तो केवल पाप खा रहे हैं। ऐसा पाप में ही भोजन किसी को सुखी या अभाव से मुक्त नहीं बना सकता। सुखी बनाने के भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं होता है, पेट भर के जीव आनंदित हो जाए उसलिए होता है। और तब तक वो भोजन जो पापमय भोजन होता है, जो अर्पण नहीं किया जाता, वो सुखी नहीं कर सकता। अकाल या दुर्भिक्ष जनसंख्या वृद्धि के फल स्वरूप नहीं होती है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये अकाल आ रहे हैं, दरिद्रता हो रही है, भूखमारी हो रही है, तो ये इसलिए नहीं हो रही है कि जीव पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई है। जैसा कि अल्पज्ञ अर्थशास्त्री सोचते हैं, जो बेवकूफ हैं वो ऐसा सोचते हैं भाई पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई इसलिए सब भूखे मर रहे हैं। जब मानव समाज जीवों के पालन हेतु भगवान द्वारा दिए गए उपहारों के प्रति कृतज्ञ रहता है, तब समाज में किसी तरह का अभाव नहीं रह पाता। बहुत सुंदर बात है। अगर हम भगवान के दिए उपहारों के प्रति कृतज्ञ हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो कोई गरीब नहीं रहता, कोई दरिद्र नहीं रहता। हम जानते हैं राम राज्य को क्यों पसंद किया जाता है, क्योंकि तब कोई भिखारी नहीं होता था, तब कोई दरिद्र नहीं होता था, कोई बीमार नहीं होता था, कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां पर पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाती थी। तो क्यों? क्योंकि सब लोग भगवान की बात को मानते थे, भगवान के आज्ञा का पालन करते थे, तो इसलिए हर कोई संतुष्ट होता था। इसलिए संतुष्ट होने का मतलब ये नहीं कि लाइफ लग्जरियस हो। जीव जब भगवान की आज्ञा का पालन करता है तभी वो सुखी रह सकता है। तब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब मानव समाज जीवों के पालन हेतु भगवान द्वारा दिए गए उपहारों के प्रति कृतज्ञ रहता है, तब समाज में किसी तरह का अभाव नहीं रह पाता। किंतु जब लोग भगवान के ऐसे उपहारों का आंतरिक मूल्य नहीं समझते तो उन्हें निश्चय ही अभाव रहता है। जो व्यक्ति ईश भावना भावित नहीं है, भले ही वह अपने विगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप संप्रति ऐश्वर्यमय जीवन बिता ले, किंतु यदि वह ईश्वर के साथ अपने संबंध को भुला देता है तो उसे शक्तिशाली भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा निश्चय ही भुखमारी का सामना करना पड़ेगा। ईश्वर भावना भावित हुए बिना अथवा भक्तिमय जीवन के बिना मनुष्य शक्तिशाली भौतिक प्रकृति की दृष्टि से बचकर निकल नहीं सकता। तो बहुत ही सुंदर और सिंसियर बात यहाँ पर बताई जा रही है कि भले हमको हमने बहुत सारे पुण्य किए हैं और उन पुण्य कर्मों के फलस्वरूप हमको बहुत लग्जरियस लाइफ मिल रही है, बहुत ऐश्वर्यमय जीवन मिल रहा है, लेकिन यदि हम इन सब उपहारों को कृतज्ञता के साथ भगवान की भक्ति में समर्पित नहीं करते हैं, भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, भगवान के नाम जप को नहीं करते हैं, भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं जोड़ते हैं, भगवान की भक्ति सेवा नहीं करते हैं, तो जो व्यक्ति भगवान के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ते उनके जीवन में दुख आएगा, कष्ट आएगा, संकट आएगा। और ईश्वर भावना भावित हुए बिना अथवा भक्तिमय जीवन के बिना मनुष्य शक्तिशाली भौतिक प्रकृति की दृष्टि से बचकर नहीं निकल सकता। क्योंकि भगवान ने स्वयं की दिया कि ये जो भौतिक प्रकृति है, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतिया, इसको पार करना बहुत कठिन है। इसलिए यदि जीव भौतिक प्रकृति जो कि बहुत ही शक्तिशाली है और उसको पार करना कठिन है, यदि उससे बचना चाहता है तो उसका एक ही उपाय है कि वो भगवान की भक्ति करें, भगवान की शरण। भगवान ने कहा माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतम तरन्तिते, तुम्हें अगर माया से बचना है तो मेरी शरण में आना पड़ेगा। और शरण में आने का मतलब यही है, हम जो खाएं पहले भगवान को अर्पण करें, भगवान की कृतज्ञता को हर क्षण हम याद रखें, भगवान ने हम पर कितने उपकार किए हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करें, भगवान की कथाओं को श्रवण करें।
आगे देवतागण भगवान की स्तुति करते हुए अत्यंत ही सुंदर रीति से भगवान को कहते हैं, त्वं न सुराणां मसिसान्वयानां कूटस्थ आद्या पुरुष पुराणां त्वं देव शक्त्यां गुणकर्मयोनां रेतस्त्वजायां कविमाधदेज त्वं न सुराणां मसिसान् कूटस्थ आद्य पुरुष पुराण त्वं देव शक्त्यां गुणकर्मयोनां रेतेस्त्वजायां कविमाददेज
त्वं न, त्वं मन आप, न मन हम, सुराणां यानी देवताओं के असि हो, मसि सान्वयानाम यानी विभिन्न कोटियों समेत, कूटस्थ अपरिवर्तित, आद्य यानी बिना किसी श्रेष्ठ के, द्वितीय अद्वितीय, और पुरुष यानी संस्थापक व्यक्ति, और पुराण यानी सबसे प्राचीन। यानी भगवान को कहते हैं देवतागण कि आप तो कूटस्थ हैं अर्थात अपरिवर्तित, आपके अंदर कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता, आप आदि हैं यानी आपका कोई आदि नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है, आप पुरुष हैं यानी आप ही भोक्ता हैं, और पुराणम यानी सबसे प्राचीन है जिसका कोई और संस्थापक न हो। और त्वम देव शक्त्यम गुण कर्म योनौ, त्वम यानी आप, देव यानी हे भगवान, शक्त्यम यानी शक्ति के प्रति, गुण कर्म योनौ यानी भौतिक गुणों तथा कर्मों के कारण के प्रति, रेते स्वजायाम, रेते माने जन्म, जन्म के का वीर्य तू निसंदेह, अजाया यानी उत्पन्न करने के लिए, कविम यानी सारे जीव, आदि आद देह यानी आरंभ किया, अजय यानी अजन्मा। अनुवाद, देवता भगवान से कहते हैं आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि साकार संस्थापक हैं, फिर भी आप सबसे प्राचीन हैं और अपरिवर्तित रहते हैं। हे प्रभु, आपका न तो कोई उद्गम है, ना ही कोई आपसे श्रेष्ठ है। अपने समस्त जीव रूपी वीर्य द्वारा बहिरंग शक्ति को गर्भित किया है, और फिर भी आप स्वयं अजन्मा हैं। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद देखी, श्रीला प्रभुपाद जी कहते आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा से लेकर अन्य सारे जीवों के पिता हैं। जैसे देवतागण कहते हैं आप हम सबके उद्गम हो, तो श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं सब जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा से लेकर जितने भी जीव हैं, ब्रह्मा से लेकर शोंटी तक सबके, सब जीवों के पिता कौन है? भगवान। भगवान कहते हैं पिता हम से जगत हो, ब्रह्मा से ही विभिन्न योनियों में अन्य सभी जीव उत्पन्न होते हैं। जितने भी जीव हैं उनका सृजन ब्रह्मा ने का किया, फिर भी परम पिता का कोई पिता नहीं है। सभी श्रेणियों का प्रत्येक जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा तक, किसी पिता से उत्पन्न होते हैं, किंतु भगवान का कोई पिता नहीं है। जब वे अपनी अहितु की कृपा से इस भौतिक जगत का कोई भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, तो वे भौतिक जगत में उसके नियमों के अनुसार अपने किसी महान भक्त को अपना पिता स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे ही स्वामी हैं। इस कारण अपने पिता का चुनाव करने के लिए वे सदैव स्वतंत्र रहते हैं। अब यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बोलते वैसे तो उनका कोई पिता नहीं है, लेकिन संसार का जो, उसके अनुसार भगवान जब संसार में आते हैं तो किसी न किसी भक्त को अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। वो स्वतंत्र हैं, जिसको चाहे वो अपने माता पिता बना देते हैं। उदाहरणार्थ नरसिंह देव के अवतार में एक खंभे से प्रकट हो गए, तब उन्होंने कोई पिता संसार का कोई व्यक्ति नहीं चुना, बस खंभे से प्रकट हो गए। और भगवान श्री राम के अपने अवतार में उनके चरण कमलों के स्पर्श से पत्थर से अहिल्या प्रकट हो गई। वे परमात्मा अभी पहले क्या पत्थर से या खंभे से स्वयं प्रकट हुए, और कभी पत्थर को स्पर्श करते हैं उसमें से अहिल्या को प्रकट करा देते, तो वो परमात्मा रूप में प्रत्येक व्यक्ति के संगी भी हैं, किंतु वे अपरिवर्तित रहते हैं। यानी भौतिक जगत में जीव अपना शरीर बदलता रहता है, किंतु भगवान इस जगत में होते हुए तो भी सदा अपरिवर्तित रहते हैं, यही उनका विशेष अधिकार है। भगवान सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, आत्मस्वरूप है भगवान में शरीर और आत्मा का भेद नहीं। हमारे अंदर आत्मा कितनी है, बालग्रे सतभागस्य शतदा कल्पितस्य, एक बाल की नोक के 10,000 में हिस्से के बराबर हमारे अंदर आत्मा है, और भगवान सिर से नख तक आत्मा ही है। तो भगवान अपरिवर्तित हैं, कभी उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 14.3 में पुष्टि हुई है, भगवान बहिरंगा या भौतिक शक्ति को गर्भस्थ कहते हैं। मम योनिर् महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददामि, हम भगवान कहते हैं मैं इस महत्त्व को गर्भस्थ करता हूँ। और इस तरह बाद में क्या होता है, सदसद योनि जन्मसु, इस तरह बाद में विभिन्न योनियों के रूप में प्रथम देव ब्रह्मा से लेकर तुच्छ चींटी तक सारे जीव उत्पन्न होते हैं। भगवान ने कहा सर्व योनेषु येनेकम, जितने भी योनियां हैं वो सब मैं उत्पन्न करता हूँ। और तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रद पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ। तो ब्रह्मा से लेकर जितनी छोटी छोटी छोटे से छोटी चींटी तक भगवान सारे जीवों को उत्पन्न करते हैं, और जीवों की समस्त कोटियां ब्रह्मा तथा बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। किंतु भगवान हर एक के आदि पिता हैं। वास्तविक पिता तो भगवान हैं, लेकिन सृजन का काम ब्रह्मा जी को दे दिया। भगवान के साथ प्रत्येक जीव का संबंध पुत्र पिता के रूप में होता है, समस्तर का नहीं होता। यानी वो हमेशा जितने भी जीव हैं उनके पिता हैं, ऐसा कोई नहीं जीव जो भगवान के समान है। और न तत् सम तो अधिको कुतोन्य, जब भगवान के समान कोई नहीं है तो बड़ा भगवान से बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तो किंतु पिता पुत्र का संबंध कभी कभी प्रेम में पुत्र पिता से बढ़कर होता है, किंतु पिता तथा पुत्र का संबंध श्रेष्ठ तथा अधीनस्थ का होता है। प्रत्येक जीव चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवता क्यों न हो, परम पिता का नित्य अधीनस्थ सेवक होता है। तो यहाँ पिता जो है, कभी कभी ऐसा होता है जब खेलता है बच्चे के साथ तो उसको गोद में उठाता है, उसके लिए घोड़ा बनता है। लेकिन कुछ भी बने, कैसे भी भगवान पर अपने पिता जो है वो अपने पुत्र से प्रेम करे, लेकिन हमेशा पुत्र जो है वो पिता के अधीनस्थ होता है। तो भगवान के भी हम सारे जीव क्योंकि संतान हैं, तो हम हमेशा भगवान के अधीनस्थ हैं, नित्य सेवक हैं। महतत्व सिद्धांत प्रकृति के सारे गुणों का जनक स्रोत है, और सारे जीव भौतिक प्रकृति यानी माता द्वारा प्रदत्त शरीरों के साथ भौतिक जगत में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। यह शरीर भौतिक प्रकृति का उपहार है, किंतु आत्मा मूलतः परमेश्वर का अंश होता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी खास बात ये बता रहे हैं कि असल में भगवान जो है वो हमारे आत्मा के पिता हैं। अहम सर्वस्व प्रभु, और भगवान कहते हैं कि ममैव अंश जीवलोके, ये संसार में जीव के साथ साथ प्रकृति भी तो है, परा प्रकृति भी तो है, और उसके साथ अपरा प्रकृति भी है। लेकिन अपरा प्रकृति जो है वो संसार की है, और जीव जो है वो भगवान का अंश है। इसलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सारे जीव भौतिक प्रकृति माता द्वारा प्रदत्त शरीरों के साथ भौतिक जगत में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। उनको जो शरीर मिला है वो क्यों मिला है, पूर्व कर्मों के अनुसार माता प्रकृति के अंदर उसने इस शरीर को प्राप्त किया। लेकिन यह शरीर भौतिक प्रकृति का उपहार है, परंतु आत्मा मूलतः परमेश्वर का अंश होता है। तो शरीर भले ही कर्मों के अनुसार भौतिक प्रकृति से प्राप्त हुआ हो, लेकिन आत्मा भगवान का ही अंश है। इसलिए उसे तब तक आनंद नहीं आता जब तक वो भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः निर्माण नहीं कर लेती। उसके उपरांत भगवान से देवता एक प्रार्थना करते हैं कि क्योंकि हम सब आपके अधीनस्थ हैं, आपकी ही संतान है, इसलिए हमें आप ये बताइए कि हम कैसे कार्य करें, हम कैसे कर्म करें, और हमें पूर्ण ज्ञान और शक्ति प्रदान कीजिए जिससे हम सृष्टि के विभिन्न कार्य जो हमें आपने सौंपे हैं वो भी करते रहें और साथ में आपकी सेवा भी करते रहें। देवता भगवान से कहते हैं, ततो वयम् मत् प्रमुखाय दर्थे बभूविमात्मन् करवाम किं ते त्वं न स्वचक्षु परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे यदनुग्रहणम् ततो वयम् मत् प्रमुखाय दर्थे बभूविमात्मन् करवाम किं ते त्वं न स्वचक्षु परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे मदानुग्रहणम् तत्तु वयम् प्रमुखाय दर्थे तत्तु यानी तत् अतः वयम् हम सभी मत प्रमुखा यानी महतत्व से उत्पन्न यदर्थे जिस कार्य के लिए बभूविमात्मकम् बभूमि अर्थात उत्पन्न किया आत्मन यानी हे परमात्मा करवाम यानी करेंगे किम क्या ते आपकी सेवा यानी महतत्व से हमको जो आपने उत्पन्न किया है तो हमें बताइए कि हम आपकी सेवा कैसे करेंगे। तो हम यानी आप स्वयं ना यानी हमको स्वचक्षु निजी योजना आप जिस तरह से आप हमारे लिए प्लानिंग कीजिए परिदेह यानी विशेष रूप से प्रदान करें शक्तिया यानी कार्य करने की शक्ति से देव हे प्रभु कियार्थे यानी कार्य करने के लिए यत जिस प्रकार अनुग्रहणम विशेष रूप से कृपा प्राप्त करें प्राप्त लोगों का अनुवाद देखिए। हे प्रभु महतत्व से प्रारंभ में उत्पन्न हुए हम सबों को अपना कृपा पूर्ण निर्देशन दें यानी यद अनुग्रहणम आप हम सब पर कृपा कीजिए आदेश दीजिए कि हम किस तरह से कर्म करें। कार्य तो करना है क्योंकि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत संसार में पैदा होने के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक क्षण के लिए अपने आप को कार्य करने से रोक सके, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ये जानने का प्रयास करता है कार्य कैसे किया जाए। तो देवतागण भगवान से कहते हैं कि हमें आप ही निर्देश दीजिए अनुकंपा कीजिए कृपा कीजिए कि हम कैसे कार्य करें, कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान तथा शक्ति प्रदान करें जिससे हम परवर्ती सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपकी सेवा कर सकें। जो भी हमको ड्यूटीज दी गई हैं उसके साथ साथ हम किस तरह से आपकी सेवा कर सकें, किस तरह से कार्य करें और किस तरह से कार्य करते हुए साथ में आपकी सेवा भी करें वो आप कृपा करके हमें बताइए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं और भौतिक शक्ति यानी प्रकृति को जीवों से गर्भित करते हैं। भगवान कहते हैं कि तस्मिन् गर्भम ददामि हम, तो ये संसार में जितने भी जीव हैं वो भगवान की कृपा से उत्पन्न होते हैं जिन्हें भौतिक जगत ने कर्म करना पड़ता है। अब जो भी जीव आते हैं तो कर्म करना पड़ेगा। इन सारे कर्मों के पीछे एक दैवी योजना होती है। यह योजना है कि उन बद्ध जीवों को इंद्र तृप्ति का भोग करने का अवसर प्रदान करना जो उसका भोग करना चाहते हैं। अब सृष्टि तो भगवान ने इसीलिए बनाई, अगर सृष्टि में भोग ना बनाए हों भगवान ने तो फिर उन जीवों का जो कि भोग की इच्छा से ही संसार में आते हैं तो उनका उद्देश्य तो पूरा हो गया, नहीं तो भगवान ने इस संसार में उन जीवों को जो कि भोग करना चाहते हैं एक अवसर प्रदान किया। किंतु सृष्टि के पीछे एक दूसरी योजना होती है, यह है कि जीवों को यह अनुभव करने में सहायता प्रदान करना कि वे भगवान की दिव्य इंद्र तृप्ति के लिए उत्पन्न किए गए हैं। पहले उनको भोग भी दिया जाता है और साथ साथ में योजना भी है कि इस संसार में उसको इतना दुख मिलता है कि जीव को ये एहसास हो जाए कि वास्तव में उसका कार्य स्वयं को तृप्त करना नहीं, इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, भगवान की दिव्य इंद्र तृप्ति के लिए उनको उत्पन्न किया गया। जीवों की यही स्वाभाविक स्थिति है। वास्तविक स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, भगवान का दास बनना है उसका स्वाभाविक स्थिति है। तो भगवान अद्वय है और वे अपने दिव्य धाम आनंद के लिए अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। वैसे तो एक है, अद्वितीय है, उनके जैसा कोई नहीं, लेकिन दिव्य आनंद के लिए अनेक रूपों में अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। विष्णु तत्व, जीव तत्व या तथा शक्ति तत्व, भगवान के पुरुषोत्तम रूप जीव आत्माएं तथा विभिन्न शक्ति रूपी तत्व, यानी एक तो विष्णु तत्व यानी जो भगवान के पुरुषोत्तम रूप है वो, जीव तत्व यानी जितनी जीव आत्मा है वो, और शक्ति तत्व यानी विभिन्न शक्ति रूप के जो तत्व हैं वो, ये सारे विस्तार या अंश एक ही परमेश्वर की विभिन्न प्रशाखाएं हैं, एक ही भगवान से ही ये सब निकलते हैं। जीव तत्व विष्णु तत्व के प्रचिन्न भिन्नांश हैं जिनमें सशक्त अंतर होते हैं, फिर भी वे सब परमेश्वर की दिव्य इंद्र तृप्ति के निमित्त हैं। यानी कि जितने भी जीव हैं वो भगवान के भिन्न अंश हैं, जीव तत्व विष्णु तत्व के विचिन्न विभिन्न अंश हैं। हम सब भगवान, जितने भी जीव हैं वो भगवान के अंश हैं, लेकिन जिनमें सशक्त अंतर है, यानी क्वालिटीज तो सेम है मगर क्वांटिटी जो है वो शक्ति की अलग है, फिर भी सारे जीवों का एक ही कार्य है कि दिव्य इंद्र तृप्ति यानी भगवान की इंद्र तृप्ति के निमित्त है। किंतु कुछ जीव भगवान के प्रभुत्व को, प्रभुत्व की नकल में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। कुछ जीव की इच्छा होती है भगवान को क्यों इंद्र तृप्ति दें, भगवान की क्यों सेवा करें, स्वयं आनंद लें। तो शुद्ध जीवों पर ऐसी मनोवृत्तियों ने किस प्रकार और कब अपना प्रभुत्व जमाया, इसकी विवेचना इस तथ्य से की जा सकती है कि जीव तत्वों को अत्यल्प स्वतंत्रता प्राप्त है और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कुछ जीव विराट जगत में फंस गए, अतः वह नित्यवत कहलाते हैं। अब भगवान ने जब जीव को उत्पन्न किया, जीव भगवान का अंश है लेकिन उसको थोड़ी सी स्वतंत्रता क्या प्रदान कर दी कि उसने कहा कि भाई मुझे अब अपनी खुद प्रभुत्व जताना है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करना है, क्या भगवान की सेवा करना। और हमको ऐसा लगता है ना, ऐसे जीव कैसे सोच सकता है, है ना, ऐसे कैसे सोच सकता है। लेकिन आज भी देखा जाए तो जीव की वही मनोवृत्ति है। आज जीव कहाँ चाहता है कि भगवान की सेवा करे, है ना, जबकि भगवान ने तो भगवत गीता में शास्त्रों में साफ साफ बता दिया कि जीव का मकसद क्या है, इमाम प्राप्य भजस्व, मेरा भजन करो, मेरी भक्ति करो। लेकिन आज कितने लोग हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को सरेंडर करते हैं। तो उसी तरह से पहले भी भगवान ने यही ऑप्शन दिया और जीव ने अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छा के कारण, स्वतंत्रता के कारण उसका दुरुपयोग किया, इसलिए वो नित्य बद्ध हो जाएगा, संसार में नित्य तौर पर बद्ध हो जाएगा। वैदिक ज्ञान का विस्तार भी नित्य बद्धों को स्वीकार सुधारने का अवसर प्रदान करता है और जो लोग ऐसे दिव्य ज्ञान का लाभ उठाते हैं वे भगवान की दिव्य सेवा करने की लुप्त चेतना को धीरे धीरे पुनः प्राप्त करते हैं। तो जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, वो किस लिए हैं कि जीव जो है वो इंद्र तृप्ति के बदले में भगवान की सेवा करना प्रारंभ करे, और जो इन ज्ञान से, ऐसे ज्ञान से लाभ उठाते हैं वे क्या करते हैं, भगवान की दिव्य सेवा की लुप्त चेतना को धीरे धीरे पुनः प्राप्त करते हैं। वो भूल गई है लेकिन वो बार बार भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं और अपनी उस चेतना को दोबारा से प्राप्त करते हैं कि हम सब भगवान के नित्य दास हैं। आगे श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, देवतागण भद आत्मा ही हैं जिन्होंने भगवान के प्रति इस शुद्ध चेतना की सेवा को विकसित कर रखा है, किंतु साथ ही साथ वे भौतिक शक्ति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते रहते हैं। ऐसी मिश्रित चेतना बद्ध जीवों को इस सृष्टि के मामलों को व्यवस्थित करने की स्थिति तक पहुंचाती है। अभी देवता जो हैं वो भी बद्ध आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान के प्रति शुद्ध चेतना की सेवा को विकसित कर दिया। वो बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान के जो भी कमांड्स हैं, जो कि भगवान ने उनको ड्यूटीज दी हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ भौतिक शक्ति पर अपना प्रभुत्व जताते रहते हैं। कभी कभी वो ऐसे कार्य करते रहते हैं। तो ऐसी मिश्रित चेतना यानी उनको भगवान की भक्ति भी करनी है, भगवान के आदेशों का पालन भी करना है, लेकिन प्रभुत्व भी जताने की इच्छा होती है, तो बद्ध जीवों को इस सृष्टि के मामलों को व्यवस्थित करने की स्थिति तक पहुंचाती है। और देवतागण बद्ध जीवों के विश्वस्त नेता हैं। जिस तरह सरकारी कारागारों के कुछ पुराने बंदियों को कारागार के प्रबंध का उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंप दिया जाता है, उसी तरह देवतागण सुधरे हुए बद्ध जीव हैं जो भौतिक सृष्टि में भगवान के यहाँ श्री प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर ना उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सरकारी कैद खाने होते हैं उसमें जो बहुत पुराने बंदी होते हैं, कैदी होते हैं, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी जाती है, क्योंकि सबको पता होता है, सरकार को पता होता है कि ये बहुत अच्छे हैं, अभी बात मानते हैं, सुलझे हुए हैं। तो उसी तरह से यहाँ जो देवता हैं वो भी इस भौतिक जगत में बद्ध जीव ही हैं, लेकिन देवतागण सुधरे हुए बद्ध जीव हैं, यानी वो मानते हैं सरकार की बात को, जो भौतिक सृष्टि में भगवान के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे देवतागण भौतिक जगत में भगवान के भक्त होते हैं और जब वे संसार पर प्रभुत्व जताने की संपूर्ण भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं और उनमें भगवान की सेवा करने की अतिरिक्त और कोई अन्य इच्छा नहीं रहती है। तो धीरे 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 भगवान की सेवा करते करते हृदय के अंदर पवित्रता आ जाती है और प्रभुत्व जताने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। एक ही इच्छा रहती है कि हमें भगवान की सेवा करनी है, तो वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं और उन्हें भगवान की सेवा करने की अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं रहती। इसलिए जो भी जीव भौतिक जगत में कोई पद चाहता है वो भगवान की सेवा में ऐसी इच्छा प्रकट कर सकता है और ईश्वर से शक्ति तथा बुद्धि मांग सकता है, जैसा कि इस विशिष्ट श्लोक में देवताओं के उदाहरण से स्पष्ट है। तो यदि कोई भी हमारी इच्छा है तो भगवान के सामने जाकर हम प्रकट कर सकते हैं। भगवान ने कहा, मेरे पास विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। तो यदि इच्छा भी है तो भगवान से हम मांग सकते हैं कि भगवान, हमारी ये इच्छा है कि हम संसार के कार्य को, इस कार्य को करना चाहते हैं, तो आप हमें शक्ति और बुद्धि प्रदान कीजिए, जैसे कि देवता कह रहे हैं। तो भगवान से आलोक तथा शक्ति प्राप्त किए बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता। श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में भगवान कहते हैं, मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम् अपोहनम् च, कि मैं ही जीव को बुद्धि देता हूँ, स्मृति देता हूँ, ज्ञान देता हूँ और भूलने की शक्ति देता हूँ। तो सारी स्मृति, सारा ज्ञान तथा सारी विस्मृति उन भगवान द्वारा अभियंत्रित होती है, जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आसीन है। बुद्धिमान मनुष्य भगवान से सहायता मांगता है और भगवान अपना नानाविध सेवाओं में लगे निष्ठावान भक्तों की सहायता करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बात देवताओं से हमें सीखने को मिलती है कि वो अपने कार्य करने से पहले भगवान से शक्ति मांग रहे हैं, भगवान से बुद्धि मांग रहे हैं। तो बुद्धिमान मनुष्य को भी ऐसा करना चाहिए, रोज भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, आपने मुझे बहुत सारी ड्यूटीज दी हैं, मेरे बहुत सारे कर्तव्य हैं,
आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं अपने कर्तव्यों को अच्छे से पालन करूं, मैं अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाऊं, और साथ साथ में मुझे ये शक्ति दीजिए कि मैं इन सब ड्यूटीज़ के करते हुए आपकी भक्ति कर सकूं, आपसे प्रेम कर सकूं, संसार से अपनी आसक्ति समाप्त करके आपके चरणों में प्रेम उत्पन्न कर सकूं। तो भगवान बहुत कृपालु हैं, भगवान हमारी हृदय से निकली हुई सिंसियर प्रार्थना को कभी भी नहीं व्यर्थ होने देते, वो अवश्य स्वीकार करते हैं, अवश्य हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं भगवान उसको सॉल्व करते हैं। तो भगवान ने देवताओं को जीवों के विगत कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में उत्पन्न करने का कार्यभार सौंप रखा है, देवताओं का काम है। तो वे यहाँ पर भगवान से अपने अपने कार्यों को पूरा करने के लिए बुद्धि तथा शक्ति की याचना कर रहे हैं। इसी तरह कोई भी बद्धात्मा दक्ष गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो सकता है और क्रमशः भवबंधन से मुक्त हो सकता है। गुरु भगवान का प्रकट प्रतिनिधि होता है, और जो कोई भी अपने को गुरु के निर्देशन में रहकर तदनुसार कार्य करता है वह बुद्धियों के अनुसार कार्य करता हुआ माना जाता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 2.41 में बतलाया गया है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना बहुशाखाय अनंताश बुद्धिर यो अव्यवसायिना। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको देवताओं से सीखना चाहिए कि किस तरह से वो भगवान से याचना कर रहे हैं, और ये सब हमें कौन सिखाएगा, जब एक दक्ष गुरु महाराज जो कि किसी परंपरा से जुड़े हुए हैं और जो कि संसार में हम जैसे बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए आते हैं, जिनके अंदर गुरु की पूर्ण क्वालिटीज़ होती हैं कि वो भगवान का भक्त होता है, भगवान के तत्व को समझता है, अपनी इंद्रियों पर उसे कंट्रोल होता है, वो जो करता है वही शिक्षा देता है, और वो परंपरा से आया हुआ गुरु महाराज, जब हम उनसे उनकी सेवा करते हैं, उनके निर्देशन में रहकर जब भगवान की भक्ति करते हैं, तो फिर बुद्धियों के अनुसार कार्य करते हुए हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में क्या कहा है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही करुणंदना, यानी जब गुरु महाराज के आदेशानुसार हम एक भगवान के अंदर अपनी बुद्धि और अपने मन को लगाते हैं, तभी हम जो है वो वास्तविक लक्ष्य की ओर जा सकते हैं। लेकिन बहुशाखा अनंता शबुद्धयो, लेकिन अगर हमारी बुद्धि यूँ भटी रहेगी कुछ वस्तुओं को कुछ व्यक्तियों के अंदर, तो फिर हम कभी भी वास्तविक लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। और एक शुद्ध गुरु महाराज जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी हैं, सिर्फ ऐसे शुद्ध वैष्णव गुरु ही हमको भगवान से जोड़ सकते हैं। इसलिए हमको सदैव अपने गुरु के आदेशों के अनुसार, और यहाँ पर हम जो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो श्रील प्रभुपाद जी के शब्द हैं, चाहे हम आप किसी से भी सुन रहे हो, चाहे मुझसे सुन रहे हो या किसी से भी सुन रहे हो, आज हम भक्ति के नाम पर जो कुछ भी कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उसका सारा का सारा क्रेडिट श्रील प्रभुपाद जी को जाता है। इसलिए हम यदि श्रील प्रभुपाद जी के आदेशानुसार भगवान की भक्ति करते हैं, तो हम धीरे 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 भौतिक प्रभुत्व की इच्छा को छोड़कर, भौतिक वासनाओं को छोड़कर भगवान के प्रेम को प्राप्त करके भगवत धाम की ओर जा सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत मैत्रेय से वेदुर की वार्ता नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।